मरकुस बाब 13। यीशु जब हैकल से बाहर आ रहा था तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा,
उस्ताद देखो, इन इमारतों को बनाने में कितने बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं और ये कितनी खूबसूरत इमारतें हैं।
यीशु ने कहा,
क्या तुम इन बड़ी इमारतों को देख रहे हो? ये तमाम इमारतें तो तबाह हो जाएंगी। हर पत्थर को जमीन पे लुढ़का दिया जाएगा, एक पत्थर पर दूसरा पत्थर न रहेगा।
बाद में यीशु जैतून के पहाड़ पर पतरस, याकूब, यूहन्ना और अंदरियास के साथ बैठे थे। उनको वहाँ से हैकल दिखाई दिया। उन शागिर्दों ने यीशु से पूछा,
ये सब वाकयात कब पेश आएंगे और इन वाकयात को पेश आने की क्या निशानी होगी, जिससे मालूम होगा कि वाकयात अनकरीब पेश आने वाले हैं?
तब यीशु ने कहा,
खबरदार, किसी को कोई मौका न दो कि तुम्हें धोखा दे। कई लोग आएंगे, तुमसे कहेंगे मैं ही मसीह हूँ, ये कहते हुए कई लोगों को फरेब देंगे। करीब में होने वाली जंगों की आवाज और दूर के फासलों पर होने वाली जंगों की खबरें तुम सुनोगे, लेकिन खौफ ज्यादा न होना। इस किस्म के वाकयात होना ही चाहिए, लेकिन इख्तिताम अभी बाकी है। कौमें दूसरी कौमों के खिलाफ लड़ेंगी, इस दौरान हुकूमतें दूसरी हुकूमतों से लड़ेंगी। एक ऐसा वक्त आएगा कि लोगों को खाने के लिए गिज़ा न होगी। मुख्तलिफ जगहों पर जलजले आएंगे। ये वाकयात दर्द ज़ह में मुब्तला औरतों की तरह मुसीबतों वाले होंगे। होशियार रहो, मेरी पैरवी करने की वजह से लोग तुम्हें गिरफ्तार करेंगे, अदालतों को ले जाए जाओगे और यहूदियों की इबादतगाहों में तुमको मारा पीटा करेंगे। बादशाहों और हाकिमों के सामने तुमको खड़ा करके मेरे ताल्लुक से गवाही देने के लिए जबरदस्ती करेंगे। इन वाकयात के पेश आने से पहले तुम सब लोगों को खुशखबरी की तालीम देना। तुम गिरफ्तार किए जाओगे, तुम्हारा मुहासरा होगा, लेकिन तुम फिक्र न करो कि वहां तुमको क्या कहना पड़ेगा। उस वक्त खुदा तुम्हें जो सिखाएगा वही कहना होगा। उस वक्त बात करने वाले तुम नहीं होगे बल्कि रूहुल कुदस होगा। सगे भाई अपने सगे भाई को कत्ल करने के लिए हवाले कर देंगे, वालिदैन अपनी खास औलाद को और औलाद अपने खास वालिदैन के मुखालिफ होकर उनको कत्ल कराएंगे। मेरी पैरवी करने की वजह से लोग तुमसे नफरत करेंगे, लेकिन आखिर दम तक बर्दाश्त करने वाला ही निजात पाएगा। तबाही पैदा करने वाली खतरनाक चीजों को तुम देखोगे। तुम उसको वहाँ खड़े हुए देखोगे जहाँ उसे नहीं होनी चाहिए। पढ़ने वाले उसके माने को समझे। उस वक्त यहूदा में रहने वाले लोगों को पहाड़ों में भाग जाना चाहिए। बालखाना में रहने वाला उतर कर नीचे मकान में से कुछ लिए बगैर ही भाग जाएगा। खेत में रहने वाला अपना उड़ना लेने के लिए पीछे मुड़ कर न देखेगा। वह वक्त हामिला औरतों के लिए और उन माओं के लिए जो अपने गोदों में बच्चों को रखती हैं, बहुत कठिन और सख्त होगा। दुआ करो ये वाकयात जाड़ों में न हो, क्योंकि वो अय्याम मुसीबतों से पुर होंगे। जब से खुदा ने इस मखलूक को पैदा फरमाया है, वैसी मुसीबत अब तक नहीं आई और आइंदा भी वाकई न होगी। खुदा इन मुसीबत ज़दा दिनों को कम करने का इरादा किया है। अगर ऐसा न हुआ तो किसी इंसान का जिंदा बचना मुमकिन न होगा। लेकिन खुदा अपने मुंतखब शुदा खास लोगों के लिए इस वक्त में तख़फीफ करेगा। ऐसे पर आशोब वक्त में कोई भी तुमसे कहेगा कि मसीह वहाँ है, देखो, या कोई कहेगा वो यहाँ है, लेकिन उन पर भरोसा न करो। खुदा के मुंतखब लोगों को धोखा देने के लिए मुमकिन है कि झूठे मसीह और झूठे नबी आएंगे और मोजज़े जाहिर करेंगे। इन वजूहात के बिना पर बाखबर रहो। उन तमाम बातों के वाक़े होने से पहले उन तमाम के बारे में मैं तुमको इंतबाह करता हूँ। इन मुसीबत के गुजर जाने पर सूरज तारीख हो जाएगा, चांद रोशनी न देगा, तारे आसमान से टूट कर गिर पड़ेंगे, फिर आसमानी ताकतें कांप उठेंगी। उस वक्त इब्न आदम को इक्तदार और जलाल के साथ बादलों में आते हुए लोग देखेंगे। इब्न आदम अपने फरिश्तों को जमीन के हर हिस्सा में भेजकर अपने मुंतखब करदा लोगों को दुनिया के कोने कोने से एकजा करेगा। अंजीर का दरख्त हमें एक सबक सिखा रहा है। جب درخت کی ڈالیاں نرم ہوتی ہیں اور نئے پتوں کا بڑھنا شروع ہوتا ہے تو تم سمجھتے ہو کہ گرمی کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح میں نے تمہیں جو واقعات سنائے ہیں تم اسے پورے ہوتے ہوئے دیکھو گے، وہ وقت قریب آنے کے لیے منتظر ہے، تم اس کو سمجھ جاؤ۔ میں تم سے سچ ہی کہتا ہوں کہ اس نسل کے لوگ ابھی زندہ ہی رہیں گے کہ وہ تمام واقعات پیش آئیں گے۔ زمین و آسمان کا مکمل تباہ ہونا ممکن ہو سکتا ہے، لیکن میری کہی ہوئی باتیں رد نہیں ہو سکتی۔ مگر وہ دن اور وقت کب آئے گا کوئی نہیں جانتا ہے، نہ تو آسمان کے فرشتے اور نہ ہی بیٹا جانتا ہے، صرف باپ ہی کو اس بات کا پتا ہے۔ ہوشیار رہو، ہمیشہ تیار رہو، وہ وقت کب آئے گا تم نہیں جانتے۔ یہ اس شخص کے مانند ہے جو سفر پہ نکلتا ہے اور اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے، اور وہ اپنے گھر کی خبر گیری اپنے خادموں کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ ہر ایک خادم کو ایک خصوصی ذمہ داری دیتا ہے، ایک خادم کو دربان کی ذمہ داری دیتا ہے، اور وہ شخص اس خادم سے کہتا ہے تو ہمیشہ تیار رہ، اسی طرح میں تم سے کہتا ہوں، ہمیشہ تیار رہو۔ گھر کا مالک کب واپس لوٹے گا تمہیں معلوم نہیں ہو سکتا ہے، وہ دوپہر میں آ سکتا ہے یا آدھی رات کو، یا جب مرغ بانک دے یا طلوع سحر پر، مالک اچانک پلٹ کر واپس آئے گا۔ اگر تم ہمیشہ تیار رہو تو وہ جب آئے گا تو تم بحالت نیند نہ ہوگے۔ میں تم سے اور ہر ایک سے یہی کہتا ہوں کہ تیار رہو۔